ये BBC اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں خصوصی پروگرام نیم روز۔ یہ پروگرام آپ ہر روز اسی وقت شارٹ ویو پر 19 میٹر بینڈ پر 15,310 کلو ہرٹس اور 22 میٹر بینڈ پر 13,650 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے۔ یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔
بدھ 4 ستمبر جموں کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ انڈین وزیر داخلہ نے جموں کشمیر کے تاجروں کو یقین دلایا کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ مقامی صحافی کہتے ہیں حکومت حقائق چھپا رہی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2.5 لاکھ پیشنٹ کو ٹریٹ کیا گیا۔ میرا ذریعہ یہ ہے پیشنٹ کا نمبر 60 یا 70% سے زیادہ بڑا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد
نیم روز میں ثقلین امام سے خبریں سنیے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے پنچایتی نمائندوں، پھل اور سبزیوں کے تاجروں کو یقین دلایا ہے کہ جموں کشمیر میں حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر کے ان نمائندوں کے جس وفد نے امت شاہ سے دہلی میں ملاقات کی، اس کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ جموں کشمیر میں ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ پر پابندیاں 20 سے 25 دنوں میں ختم کر دی جائیں گی۔ جموں کشمیر میں ریاستی اسمبلی تحلیل شدہ ہے اور مرکزی حکومت پنچایتوں کے کشمیری نمائندوں کے طور پر لے رہی ہے۔ کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتوں نے پنچایتوں کے انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ پاکستان نے حالیہ کشیدگی کے دوران جو انڈیا سے تجارت پر پابندیاں عائد کی تھیں، ان میں زندگی بچانے والی ادویات کو مستثنی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کی تجارتی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کے ادویات بنانے والے ادارے انڈیا سے زندگی بچانے والی ادویات کے اہم اجزاء درآمد نہیں کر پا رہے تھے۔ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر بات چیت کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی فوری اور مکمل طور پر شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے تشدد کے کئی واقعات کے بعد روہنگیا پناہ گزینوں کے موبائل فونز کے استعمال پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ حکام نے روہنگیا مسلمانوں کو سم کارڈز کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ ان کے لیے فونز کے استعمال کا وقت دن میں صرف 11 گھنٹے کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں نے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے کیے تھے۔ امریکہ نے ایران کے خلائی پروگرام پر یہ کہہ کر پابندی عائد کر دی ہے کہ ایران اپنے غیر فوجی خلائی پروگرام کی آڑ میں فوجی نوعیت کے بیلسٹک میزائل تیار کر رہا تھا۔
جموں کشمیر کی عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات BBC اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہے۔ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ نے انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے پنچایتی نمائندوں، پھل اور سبزیوں کے تاجروں کو یقین دلایا ہے کہ جموں کشمیر میں حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اسی بات کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے رابطہ کیا سری نگر میں موجود ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے۔
ریچ آؤٹ کی جو کوشش ہے یہ پہلی بار ہوا ہے 1 مہینے کے دوران جب سے یہاں کشیدگی ہے۔ پہلے ہفتے میں جب یہ حالات خراب ہو گئے تھے 5 اگست کے بعد، تو اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے 1-2 دورے تو یہاں کیے، لیکن حکومت کی سطح پر، سیاسی سطح پہ یہ پہلا ریچ آؤٹ ہے۔ حالانکہ امت شاہ کشمیر نہیں آئے بلکہ یہاں سے وفود جو ہے وہ وہاں گئے، اور ان وفود میں پنچایت کے منتخب ممبران اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سول سوسائٹی کے ممبران بھی ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ امت شاہ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس طرح کے خدشات ہیں دفعہ 370 ہٹانے کے بعد، کہ جب یہ ہٹے گا تو اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئیں گے، یہاں لوگوں کی زمینیں چھین لی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے ان وفود کا کہنا ہے کہ انہیں وزیر داخلہ نے یقین دلایا ہے کہ اس طرح کی کوئی جبری کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو بھی حکومت کی زمین ہوتی ہے یعنی اسٹیٹ لینڈ ہوتا ہے، اس زمین کا بہتر استعمال کیا جائے گا، یعنی اس میں انڈسٹریل پارکس لگائی جائیں گی، سافٹ ویئر پارکس لگائی جائیں گی، جس سے یہاں ترقی ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
یہ بتائیے کہ جو حکومت نے اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا، اس کا کچھ اثر ہوا ہے؟ لوگ اب اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟
یہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہے وہ کشمیر ویلی کے 10 اضلاع ہیں۔ روہت کنسل جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جموں کے 10 اضلاع یعنی سبھی 10 اضلاع میں زندگی بحال ہو چکی ہے، کوئی بندش نہیں ہے کسی بھی طرح کی، لیکن کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ کمیونیکیشن گیپ کا ہے۔ 2 مسئلے اس وقت سب سے بڑے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے कि जो मोबाइल फोन और इंटरनेट के राबितों पर लगी पाबंदी है, एक तो वो बदस्तूर है और दूसरा ये कि 5-6 मरतबा हुकूमत ने ऐलान किया कि स्कूलों में दरसो तदरीस का अमल शुरू किया जाएगा लेकिन सिर्फ असातिज़ा स्कूल आते हैं। अब हतमी तौर पर यह किया गया कि 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का ऐलान किया गया है अचानक, और कहा गया है कि 10 तारीख से पहले पहले बच्चे फॉर्म भरें। अब स्कूलों में जो सरगर्मी है वो दरसो तदरीस की सरगर्मी नहीं है बल्कि वालिदैन बच्चों को लेकर स्कूलों का रुख कर रहे हैं, वहां पे वो इम्तहानात का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। तो इससे हल्की सी एक एक्टिविटी सी हो गई है और हुकूमत ने भी इस पर इत्मीनान का इजहार किया है कि स्कूलों में एक तरह का किसी न किसी तरह का अमल तो शुरू हो गया है।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जहां आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी भी मसाइल से दो चार हैं। शॉन सतीफ, जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और कई पब्लिकेशंस के लिए काम कर चुके हैं, बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने अपनी मुश्किलात के बारे में बताया।
इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स बिकॉज देयर इज कोई कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। अगर कल मैं सोच रहा था कि अगर मैं डिटेन होता, बुक होता, कुछ किया होता मेरे साथ, तो मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हालात सुधर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हम जब जाते हैं तो जो आर्मी है या पुलिस है उनको जाने नहीं देगी या बहुत सारे सवाल पूछेगी और कुछ अलाव नहीं करेगी, कुछ दिखाने के लिए लोगों से भी बात नहीं कर सकते हैं। तो माहौल बहुत ही मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड है, तो कोई फ्रीडम नहीं है।
इसके अलावा कश्मीर पर ही रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी सोहेब भी हैं, जिनको 2016 में कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान आंख में पैलेट गन का छरा लगा, जिसकी वजह से उनको कई माह तक इलाज करवाना पड़ा। उन्होंने कहा,
देखिए 3 साल से इलाज कर रहा हूँ मैं अपनी आँख का, 3 साल होने को आए हैं, इनफैक्ट 4 सितंबर अभी 2 दिन के बाद है, तो 3 साल कम्प्लीट मुकम्मल हो जाएंगे। जब मैं फिर से कॉन्फ्लिक्ट कवर करने आया तो सोचा चलो इस बार कुछ रिलैक्सेशन होगी, लेकिन यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में वापस आकर पता चला, एज ए फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट आकर पता चला कि अब किस्तों में हो रहा है, यहाँ पर किस्तों की ज़िंदगी अब बितानी पड़ेगी क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। आप ये जो हमारे शान है ये गए, ये तो हमारे साथ जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रोज़ होता है। और उसके बाद अभी रिसेंटली जब मैं नवाकदल में गया था, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग की डेथ हो गई थी स्मोक कैनिस्टर की वजह से। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे CRPF वाले ने रोका एंड ही सेड कि मुझे जो आपके DM साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका अथॉरिटी लेटर दिखाओ। मैंने कहा जी कर्फ्यू पास है, तो वो लेटर अथॉरिटी लेटर पर अड़ गया। तो ये सब दिक्कतें मतलब 2016 में भी थी, आज भी हैं। आज भी कितने सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो फ्रीलांस करते हैं और उनके मेमोरी कार्ड्स डिलीट कराए गए इस 2019।
जब हालात कशीदा हों और बाखबर रहने का कोई जरिया ना हो,
इन्फॉर्मेशन उतनी है जितनी हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चलती है, के अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो सुना कीजिए कश्मीर के बारे में BBC उर्दू सर्विस का खुसूसी प्रोग्राम नीम रोज। रेडियो के अलावा हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी हर रोज बराह रास्त।
आप BBC उर्दू सर्विस से प्रोग्राम नीम रोज सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों की तादाद आखिर है कितनी, इसी पर नजर रखे हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रबोध जम्वाल।
सरकार ने ये दावा किया है कि जो हमारे पास मेडिकल सप्लाईज हैं या हॉस्पिटल में जितने भी स्टॉकिंग है वो काफी है, लेकिन हमारी अपनी असेसमेंट ये है कि हमने जो देखा है कि वहां पे सरकारी तौर पर इस चीज की कोई तस्दीक करने को तैयार नहीं है कि कितने लोग इलाज मुलाजे के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचते या किसी और दीगर मेडिकल फैसिलिटी है वहां पे उनको इलाज या मुआवजा के लिए कोई मदद की जाती है। जबकि अगर ये देखा जाए कि जैसे प्लान होता है कि हर महीने या हर हफ्ते या जैसे भी मेडिकल सप्लाईज का या पेशेंट का सिस्टम है, तो उसमें इन्होंने दावा किया कि 2.5 लाख के करीब जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया गया, लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कश्मीर में खास तौर से पेशेंट्स का नंबर जो है वो 60-70% से ज्यादा बड़ा है, जबकि सारा लॉकडाउन है तो ये पेशेंट कहाँ से आता है। जाहिर है कि जो एहतजाज हो रहा है वहां पे जो पैलेट गन की इंजरी होती है या टियर गैस में होता है या लाठीचार्ज किया जाता है या वैसे कोई तशद्दुद की जो वाकया होता है उसकी वजह से ये लोग हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ से ये किया जाता है कि इन लोगों को जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर भेजा गया।
इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि बहुत सारे कारकुन जो नज़रबंद थे वो जब इंडिया आए उसके बाद उनको दोबारा नज़रबंद कर दिया गया है।
जी, उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि जो सियासी लीडरान जितने भी हैं या सियासी उनके कारकुन हैं, जैसे कि हमारे कश्मीर के श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर हैं जुनैद अजीम मट्टू, उनको सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए या इलाज मुलाजे के लिए दिल्ली लाया गया था, लेकिन वापस जैसे भी गए तो उन्होंने खुद कहा था कि ये मुझे फिर दोबारा नजरबंद कर देंगे। उसमें हालात हाजरा ये है कि इन्होंने सरकारी तौर पे तस्दीक इतनी ही की है कि हमने 4,500 लोगों को नजरबंद किया है, जबकि मुझे लगता है कि वहां पे जितना रश होता है लोगों के मिलने वालों का, उससे और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनके बाहर जितने लोग मिलने के लिए आए होते हैं, ये नंबर जो है वो कहीं ज्यादा होना चाहिए। सरकारी तौर पे सिर्फ इन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों को हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि 2 साल तक एक इंसान को बंद कर रख सकता है, उसके तहत हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है और डिटेन भी किया।
ये थे प्रभोत जम्वाल। और अब सामईन के कश्मीर में अपने प्यारों को भेजे हुए पैगामात नीम रोज में शामिल करते हैं।
मेरा नाम परवेज अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील मेंढर अड़ी में रहता हूं। आज 1 महीना हो गया हमारे को घर में कोई रास्ता नहीं हो रहा है और पता नहीं घर वाले किस परेशानी में होंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि घर वाले भी ठीक ठाक हो गए। हम भी इंशाल्लाह ये पैगाम देना चाहता हूँ कि घर वालों को कि हम बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं, हमारी कोई फिक्र नहीं करना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे।
मैं फैज़ अहमद अहंगर सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मेरा पैगाम मेरे घर वालों के नाम है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ, खैरियत से हूँ और अपने घर वालों की खैरियत चाहता हूँ। और मेरा पैगाम है मेरे दोस्त के लिए आमिर नबी डार, जो कि 28 अगस्त को घर चले गए छुट्टी पे, मगर अभी तक हमें उसका कुछ अता पता नहीं। अगर आमिर तुम ये मैसेज सुन रहे हो, जब भी सुनोगे तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे सभी दोस्त परेशान हैं, खासकर रफ़ीक आपके लिए बार बार पूछ रहा है। प्लीज़ मेहरबानी करके इस मैसेज का जवाब ज़रूर दें।
मैं अब्दुल क़य्यूम सनई सुनकोट जम्मू और कश्मीर से बोल रहा हूँ और फ़िलहाल मैं कतर में हूँ। मैं अपने घर वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब भाई जो खैरियत से हैं, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आप हजरात भी खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे।
मैं खालिद हुसैन कपवाड़ा तंगदार से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि घर वाले सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से।
कश्मीर से तनवीर अहमद मलिक, मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। यहाँ पे मैं बखैर व आफियत से हूँ, उम्मीद है कि मेरे घर वाले भी बखैर व आफियत से होंगे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर अहमद कवेद से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील मेंढर अड़ीवा। और हमारे घर वालों को कोई पता निवा नहीं लग रहा है, तो मेरी मैसेज ये है, हम खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कुवैत की कंट्री में, हमारी कोई फिक्र ना करें।
ये थे आपके पैगामात। जम्मू कश्मीर में ज़राए इबलाग और मवासलात तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद है। वादी में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर बंद है। अलबत्ता जम्मू के 10 अज़ला में से 5 में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की खबरों और ताज़ा सूरत हाल पर मबनी प्रोग्राम नीम रोज अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आखिर में अहम खबरों का खुलासा।
भारत के वजीर दाखला अमित शाह ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के पंचायती नुमाइंदों और फल और सब्जियों के ताजरों को यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान जो इंडिया से तजारत पर पाबंदियाँ आयद की थीं, उनमें ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात को मुस्तस्ना करार दे दिया है। जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत के खात्मे के बाद खत्ते में पैदा होने वाली कशीदगी पर बातचीत के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बरतानिया ने कहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के इल्ज़ाम की फौरी तौर पर मुकम्मल और शफाफ तहकीक़ात होनी चाहिए। नीम रोज़ आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।